हूँ डॉक्टर खलील और प्राइम इंस्टीट्यूट की जो वीडियो सीरीज़ है मुकालमा सबके साथ, उसमें आज हम निजकारी या प्राइवेटाइजेशन पे बात करेंगे। और हमारे गेस्ट मुईन बाटले हैं, आज हमारे साथ मेहमान हैं, मौजूद हैं। मुईन बाटले जो हैं, उनकी बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिक्स की है, पब्लिक पॉलिसी की है। मुईन बाटले ने गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है और इसके साथ एकेडमिया से बल्कि उनका ज़्यादा ताल्लुक रहा है। तो मैं मतलब अब मुईन साहब से कहूँगा कि आए हम थोड़ा सा निजकारी के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। और एक तो देखिए ना, हमारे यहाँ एक हैरानी ये होती है कि सब कोई करना चाहते हैं, मतलब अक्सरियत अगर आप कहें तो लोग इस चीज़ के हक़ में हैं कि भाई अब प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होती नहीं, हो नहीं पाती। इशू कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हम ज़रा खुल के बात करेंगे इस चीज़ पे। जी मुईन साहब।
जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खलील। ये जी प्राइवेटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल के लिए। और आप एक तरह जनरल आपने बात की कि जी सब ये करना चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पाती, लेकिन अगर पॉलिटिकल एंगल से आप देखें तो मैं समझूंगा कि पिछले कोई 10 साल से हम एक्चुअली ये करना नहीं चाह रहे। जो एक
जी हाँ
मतलब देखें ना, एक पॉलिटिकल कंसेंसस था बाय पार्टिसन कि जी उस वक्त की जो दो पार्टीज थी PMLN और PPP, तो वो प्राइवेटाइजेशन हो रही होती थी और गवर्नमेंट चेंज होती थी और प्राइवेटाइजेशन कंटिन्यूड रहती थी। और ये एक चीज समझी हुई थी कि जी ये प्राइवेटाइजेशन पे दोनों की का एग्रीमेंट है और ये चलती रहेगी, क्योंकि जो लार्ज ट्रांजेक्शन है उनमें टाइम लगता है, प्रेपरेशन में टाइम लगता है। तो अगर ये कि गवर्नमेंट चेंज होने से अगर वो चीज़ रुक जाए तो फिर बहुत वेस्ट हो जाता है एफर्ट। तो ये फिर कोई 10 साल पहले रफली ये कंसेंसस जो है वो टूट गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से जो हमारा पॉलिटिकल, हमारी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें जो एक क्योस आया है और एक किस्म की कॉन्फ्रंटेशन ज़्यादा हुई है, उसका ये उसकी एक ये कॉस्ट आप कह सकते हैं या एक नुकसान जो आया है मुख्तलिफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी और इस एक एरिया में भी। तो मेरे ख़्याल में ये एक वजह उसकी है। और लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो टाइम है, क्योंकि उससे नुकसान, क्योंकि मैं तो उसका बड़ा सपोर्टर हूँ, प्राइवेटाइजेशन अगर सही तरह से की जाए तो वो एक ज़रूरत भी है, एक अच्छी चीज़ भी है। तो और ये जो टाइम है, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, बड़े लॉसेस जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि इसको सिंसियरली रीस्टार्ट किया जाए। और कुछ थोड़े एफर्ट्स हो भी रहे हैं लेकिन ये अभी भी प्रॉपर तरीके से रीस्टार्ट नहीं हुई या नहीं हो रही।
अच्छा, आपने जो बात की है, चलें थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं हम, कि आपने कहा कि पहले कॉन्सेंसस ख़ास तौर पर जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनका डेवलप हो चुका था कि प्राइवेटाइजेशन। और मैंने भी देखा ये चीज़ें, तो कि जब PMLN तो है ही प्राइवेटाइजेशन के हक़ में, अच्छा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती थी ख़ासतौर पर 90s का जब हम देखते हैं तो बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी और प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल का स्लोगन चला करता था। तो ये कॉन्सेंसस बन गई। अच्छा, बाद में ये कॉन्सेंसस जो ब्रेक हुई है, आपने कहा कि एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन ज़्यादा हो गई दोनों पार्टियों में, तो थोड़ा सा इस पर आप ज़रा कुछ हमें मतलब एक समझने के लिए कि भाई वो एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होने से जो पॉलिटिकल पोजीशंस थी उनकी दोनों पार्टियों की, एक ही पोजीशन हो गई थी ना प्राइवेटाइजेशन के हक में थे, तो वो फ़र्क कैसे आया, क्यों ये हुआ, या तो किस तरह हुआ। एक तरह से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो जो मेकानिज़म था पॉलिटिकल, क्या हुआ क्या उसमें।
थोड़ा सा जी मैं एक दो चीज़ें बैकग्राउंड की अगर बता दूँ, एक तो मैं क्या वजह है कि मैं इतना स्ट्रांगली फील करता हूँ या मेरे लिए प्राइवेटाइजेशन क्यों, मुझे उसमें इतनी दिलचस्पी है और क्यों मैं उसको इतना अहम समझता हूँ। तो एक वजह उसकी ये है कि मैंने इसको प्राइवेटाइजेशन को दोनों साइड से देखा है। एक वो उसका मतलब ये कि एक तो होती है ना जी गवर्नमेंट जो एक प्राइवेटाइज करना चाह रही हो, तो एक उसकी साइड होती है, फिर एक जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं वो एडवाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन्स पे, तो एक वो साइड होती है। तो मेरी फ़र्स्ट जॉब सिटी बैंक के साथ थी और 90s, ये 90s का टाइम और नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुई और डीरेगुलेशन भी हुई, तो उसमें हमने गवर्नमेंट को एडवाइज़ किया। और उसके बाद मैं कुछ अरसा वर्ल्ड बैंक के साथ भी रहा उनके प्राइवेटाइजेशन डिपार्टमेंट में, तो हमने गवर्नमेंट साइड पे भी एडवाइज़ किया। और श्रीलंका में मैं फिर था कोई एक डेढ़ साल, उनका प्रोग्राम डेवलप किया। तो एक तो ये वजह है कि मेरी उसमें क्यों मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट है और मेरी जो वाबस्तगी रही है। अच्छा, दूसरा ये हुआ क्या, मैं समझता हूँ कि एक क्लैरिटी थी इकोनॉमिक साइड पे उस वक्त की जो दोनों पार्टीज थी कि जी क्लैरिटी कि जी हमें करना क्या है। जब इकोनॉमिक प्लान प्रपोजल वगैरह बनता था जब इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टोस बनते थे तो उसमें क्लैरिटी होती थी। फिर बीच में जो मुशर्रफ साहब का टाइम था उसमें भी काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हुई है, लेकिन वो एक एक तरह से एक ज़ाहिर डिसरप्शन था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो डिसरप्शन था। और उसके बाद फिर जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वापस आई तो उसमें फिर चीज़ें डिफरेंट थीं, क्योंकि उसमें फिर एक मुख्तलिफ टाइम था, दुनिया में भी वो फोकस नहीं रहा। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जी दुनिया में क्या हो रहा हो। 90s का टाइम ये था कि जी दुनिया में बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, ठीक है ना जी, हाँ, वर्ल्ड बैंक भी बड़ा उसको और IMF भी उसको बड़ा इनकरेज कर रहे थे। जो हम उनसे कोई लोन लेते थे तो जो सारी कंडीशंस थी उनमें ये कि जी ये प्राइवेटाइजेशन आपको रिज्यूम करनी है, ये सारी कंडीशंस हैं, वो उसमें बहुत ही मोटा मोटा लिखा होता था। तो हुआ ये कि बहुत से कंट्रीज ने प्राइवेटाइजेशन कर ली, हम जो थे हमने स्टार्ट तो अच्छा लिया लेकिन फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो जो बहुत से जैसे अर्जेंटीना है, बहुत से कंट्रीज ने यूरोप में भी, ईस्टर्न यूरोप, तो जब प्राइवेटाइजेशन हो गई तो वो ग्लोबल इंटरेस्ट चला गया, ख़त्म हो गया, तो वो ग्लोबल साइड से भी वो हालात नहीं थे। और फिर जब 2013 में जब एक तरह से गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिज्यूम होती है तो फिर हालात डिफरेंट थे। फिर जैसे आप कह सकते हैं CPEC एक प्रायोरिटी थी और उस वक्त बस टाइम डिफरेंट था और वो एक कंसेंसस टूट गया, क्लैरिटी टूट गई। गवर्नमेंट्स ने फिर पार्टीज़ ने ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब उन्होंने किया कि जी हमें इससे फ़ायदा कितना होगा नुकसान कितना होगा, तो उन्होंने उस वो नेगेटिव निकला। हालांकि मैं समझता हूं कि वो एक गलत कॉज बेनिफिट एनालिसिस था, अगर सही तौर पे ये किया जाता तो वो ये रियलाइज करते कि ये पॉजिटिव ही चीज़ है।
बिल्कुल, उलट होना था उसके।
हाँ जी, और क्योंकि मैं श्रीलंका में जो मैंने टाइम गुजारा वहाँ भी बड़ी अपोजिशन थी और प्राइवेटाइजेशन हमने बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया था, तो वहाँ हमने बड़ी सिस्टमेटिकली इसको मतलब मैनेज किया और हमने ये देखा कि जो फ़ायदा है इसका, जो जैसे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर ये प्रॉपरली की जाए। और अगर एम्प्लॉज़, अगर यूनियंस हैं और जो एम्प्लॉज़ हैं वो अगर इससे डर रहे हैं कि जी हमारी जॉब्स चली जाएंगी तो नंबर्स में वो कम हैं, और उनको भी अगर अश्योरेंस दे दी जाए, क्योंकि एक्चुअली ये वेस्ट में अलग मतलब इक्वेशन होता है और यहाँ अलग, वो इस तरह से कि जी यहाँ क्योंकि लेबर कॉस्ट लोअर हैं तो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की जो कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जो अगर बायर्स बाहर से भी आ रहे हैं तो वो तैयार होते हैं कि वो एक कोई गारंटी दे दें कि हम जी ले ऑफ्स नहीं करेंगे या करेंगे तो ओवर टाइम करेंगे या वो जो एक क्या होता है पैकेज, गोल्डन पैकेज, जो मैं नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, जी गोल्डन
जी
वो उसका ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और वहाँ जैसे टेलीकॉम की प्राइवेटाइजेशन थी तो पूरी हमने वहाँ एक श्रीलंका में कैंपेन की। अच्छा। और यूनियंस को हमने कन्विंस कर दिया कि वो इसको सपोर्ट करें। और वो फिर उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया और ये प्राइवेटाइजेशन हुई भी, उनकी प्लांटेशंस की भी हुई, बहुत सारी उनकी प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल हुई। तो यहाँ भी उसी तरह से ये किया जा सकता है, मेरे ख्याल में इतनी ऑपोजिशन नहीं होनी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लोग कुछ गलत चीज़ें सोच रहे हैं, ये चीज़ पब्लिक स्पेस में डिस्कस ही नहीं हो पाई।
अच्छा, ये आपने जो श्रीलंका की मिसाल बताई, वहाँ का जो एक्सपीरियंस था आपका, अच्छा मुझे, मैं थोड़ा सा देखता हूँ अगर, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे यहाँ जैसे यूनियंस हैं या और कंसर्न जो तंजीमें बनी हुई हैं, कुछ लेफ्ट के ग्रुप हैं
जी जी,
और कुछ एनजीओज हैं जो इस चीज़ की प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत करती हैं, तो हमारे यहाँ तो इनके साथ एक डायलॉग करने की बिल्कुल कोई रिवायत मेरी ख़ास तौर पर इस पर, मतलब अगर फर्ज करें जैसे PIA है, अब PIA के जो एम्प्लॉज हैं, PIA की यूनियन है और उससे कंसर्न और लोग भी जो समझते हैं कि भाई ये नेशनल एक फ्लैग कैरियर है और ये है और ये वो है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, तो उनके साथ डायलॉग करने की तो कोई रिवायत हमारे यहाँ मौजूद नहीं। इस इशू को एक तरह से पब्लिक लेवल पे एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की गई है, या है ऐसी कोई कोशिश?
देखें जी, मुझे याद पड़ता है कि क्या एक पावर प्रोड्यूसर कंपनी थी, नेशनल पावर शायद, जो प्राइवेटाइज हो रही थी और उसकी ऑपोजिशन थी उसके खिलाफ पाकिस्तान
जी जी,
तो वहाँ हमने, मुझे जो याद है कि उसको हमने फोर्स से हैंडल किया था कि हमने वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस बुला ली थी और उनको जो यूनियन के जो प्रोटेस्ट दे, नहीं पाकिस्तान
कर रहे हैं,
और वो एक मुझे याद पड़ता है कि उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था और सराहा गया था कि अच्छा हाँ जी देखें ये कितना कैसे हैंडल हो गया
जी।
तो ये आप सही कह रहे हैं कि वो डायलॉग, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल होता है बात करना, डायलॉग जाहिर है आपको दूसरी साइड सुननी भी पड़ेगी, इसमें एक डिफरेंट स्किल सेट है जो हमारी, आप एक तरह से कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में ओपन माइंड रखना, दूसरे की बात सुनना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिक्लाइन होती जा रही हैं, ये कम से कम ऐसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू वायलेंस चीज़ें जो हैं वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व क्या मतलब, रिएक्ट उस तरह करते
हैं। सही है, फिर जो क्राइसिस की सिचुएशंस होती हैं उसमें डायलॉग करने के हवाले से हमारे यहाँ कोई इस तरह के एक्सपर्ट लोग भी मौजूद हैं।
जी जी जी, लेकिन ये हमारी जो यूनियंस हैं, एक तो ये यूनियंस भी हमारी 70s में एक ये रुझान आया कि जो यूनियंस में जो लीडरशिप है वो वर्कर्स से नहीं होती थी, वो बाहर से होती थी,
ठीक है ना जी।
इसने यूनियंस को काफ़ी ख़राब किया, क्योंकि वो तो जाहिर है उनका फिर प्योर पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उनकी वाबस्तगी भी नहीं होती उस कंपनी से, फैक्ट्री से, एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि जी चीज़ें इतनी पॉलिटिसाइज हो गई, पॉलिटिसाइज पॉलिटिक्स मैं नहीं समझता कि कोई नेगेटिव चीज़ है, पॉलिटिक्स तो एक तरीका है डेमोक्रेसी, वो बदनाम हो गई है, उसको बदनामी से निकालना है। तो अब देखिए, हमारी जैसे यूनियंस भी हैं, तो जैसे PIA में तो जी एक पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड यूनियन होगी, तो एक PMLN से एफिलिएटेड, तो ये इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर आप हर जगह, और स्टूडेंट यूनियंस में भी यही बात है, जो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई हैं, जो कि मैं समझता हूँ वो बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि वो ख़त्म है। तो ये चीज़ें चेंज होनी हैं, मेरे ख्याल में ये रिविज़िट हो सकता है, डायलॉग, पहले तो बात होना इस पर, इस पर डायलॉग हो, इसको बस एक टैबू टॉपिक बनाया जाए इस पर। अब ये किस तरह से बात शुरू होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो अगर कुछ एफर्ट्स कर भी रहे हैं तो उसके बारे में वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो चुपके कुछ चीज़ें करते हैं।
बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सीक्रेट काम हो रहा होता है ना। जी, आपकी बात सही है, यहाँ पे हमारे प्राइवेटाइजेशन को एक तरह से पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, उस पर खुल कर गुफ्तगू होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ सिर्फ ये होता है कि पोजिशन ली जाती हैं, अच्छा एक अनाउंसमेंट आ जाती है, जैसे फ़र्ज़ करें प्राइवेटाइजेशन कमीशन बन गया और वो बताता है, ख़बर आती है कि जी हमने फ़र्ज़ करें जी PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए कंसल्टेंट हायर कर लिए और हम एक ایویلیویٹیو اسٹڈی کروا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ خبر آ جائے گی اور اس خبر کے بعد اس کی پوزیشن آنی شروع ہو جائے گی, اس کی مخالفت شروع ہو جائے گی پی آئی اے کے اندر سے, پی آئی اے کے باہر سے وہ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اس طرح. اچھا تھوڑا سا ایک سائڈ کی سائڈ ٹریک ہو جاتی ہے گفتگو, لیکن میں یہاں پہ آپ نے جن کا ذکر کیا تھا نا, تو جو ہمارے یہاں کے ٹریڈ یونینزم رہا ہے, اچھا وہ سیدھی سی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑا رہا. اچھا اگرچہ اب جو اسٹوڈنٹس یونین کی آپ نے بات کی اس وقت ہے نہیں, لیگلی وہ موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی موجود ہیں وہ, آپ کو بھی پتہ ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. تو ایک جو بات ہمارے یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے پریشر گروپس بھی ہیں. اچھا انہوں نے اسی طرح سمجھیں کہ جو جہاں پہ جیسے مختلف ہیں, پی آئی اے ہے, اسٹیل ملز ہیں, ریلویز ہیں یا اور دوسری جو سرکاری ادارے ہیں, اس میں انہوں نے اپنی ٹریڈ یونینز بنائی ہوئی ہیں اور وہ بھی ایک طرح سے پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں, ایک انسٹرومنٹ بنی ہوئی ہیں ان کی وہ, اور یہی اسٹوڈنٹس یونین کے ساتھ بھی ہوتا تھا.
بالکل.
تو بلکہ میرے ایک دوست تھے بینک میں, اور وہ بتاتے ہیں, میں نام نہیں لے رہا, تو وہ بتاتے تھے ایک بہت مشہور لیبر لیڈر تھے, کراچی سے تعلق تھا ان کا, ایک بینک کے تھے وہ, اور ان کی کرپشن کی جب کہانیاں اخبارات میں آئی تھیں تو آدمی حیران ہو جاتا تھا. اچھا انہوں نے ایک بڑا وہ کہا تھا اس کے بارے میں نا, پھر ایک ٹرم بنا دی تھی انہوں نے, کہا تھا کہ یہ لیبر لیڈر نہیں ہے بلکہ لیبر لارڈ ہیں یہ.
اچھا
پورے اس فینومینن کو انہوں نے ایک ٹرم میں جو قید کر دیا تھا. اچھا واپس آتے ہیں اس کے جو پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے پاکستان میں, جو ایک طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ نے جو بات شروع کی تھی وہیں سے, پولیٹیکل کنفرنٹیشن جب ان کے درمیان ہوتی ہے, تو ایک تو مجھے لگتا ہے اس کا میکانزم یہ بنتا ہے, کیونکہ آپ فرض کریں جو فرض کریں نون لیگ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور نون لیگ خلاف ہے, نون لیگ اگرچہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہے لیکن وہ ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ اس کی مخالفت شروع کر دیں گے اگرچہ, اور نون لیگ حکومت میں ہوگی تو پیپلز پارٹی زیادہ کھل کے مخالفت کرتی, کیونکہ بہرحال تھوڑا سا اگر ہم کہیں تو جو نون لیگ ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ لیننگ ہے, اور یہ لیفٹ لیننگ, پیپلز پارٹی زیادہ لیفٹ لیننگ پارٹی ہے, تو وہ پوزیشن ان کی اور ہے بھی اسی طرح کا تھوڑا سا بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی, جو وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ جو اس طرح کے سیکشنز ہیں جیسے کبھی لیبر ہے یا اور دوسرے اس طرح کے جو نیچے کی کلاسز ہیں تھوڑا سا, ان کو وہ ایک طرح سے افیلیٹ, ان کے ساتھ افیلیشن رکھتی ہے یا وہ اس کے ساتھ افیلیشن رکھتے ہیں. تو پولیٹیکل پوزیشنز یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جب حکومت میں آتی ہیں چینج کر لیتی ہیں, جب وہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتی ہیں, لیکن جب باہر جاتے ہیں تو پھر وہی مخالفت شروع کر دیتی ہیں. تو کیا یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے, ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ ایک پولیٹیکل پوزیشن تو بنائیں نا اپنی, یا کس طرح کی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں آپ؟
اچھا جی, میرا کچھ تھوڑا سا اس میں خیال یہ ہے کہ آج کل جو پولیٹیکل جو فضا ہے نا جی, اور جو ایک حقیقت ہے, وہ چیزیں اتنی مطلب اتنے مشکل حالات ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پالیسیز جیسے پرائیویٹائزیشن ہو گئی یا اکنامک پالیسیز پہ بھی آپ اگر جتنا بھی ایفرٹ کریں, تو یہ تو بھائی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ایک طرح سے ایک بہت ہی کرائسس کا شکار ہے نا جی, ٹھیک ہے آج کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کچھ ہمیں کرنا ہے کہ جی پرائیویٹائزیشن پہ مطلب فوکس ہو اور اس کو ایک طرح سے آگے بڑھایا جائے, تو یہ جو ساری بات چیت ہے, ڈسکشن ہے, یہ ایک طرح سے سول سوسائٹی آپ کہہ لیں یا پبلک اسپیس میں میرے خیال میں وہ بہتر ہے کہ جی وہ اس میں ہو, اور پھر یہ دعا یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایک نارمیلٹی کی طرف آئے, اور جب وہ انشاءاللہ آ جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ان سے انگیجمنٹ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن آج کل تو مطلب یہ ایکسپیکٹ بھی کرنا کہ کوئی سیریسنس یا فوکس کے ساتھ یہ بات ہوگی, میرے خیال میں یہ انریلسٹک ہے. تو جی یہ ادھر میرے خیال میں جانا بڑی افسوسناک بات ہے, لیکن یہ ایسا ہی ہے آج کل. اور اگر ہم یہ ظاہر ہے ایک ہمارا وہ ہو سکتا ہے کہ ریاکشن کہ جی وہ ہم ڈینائل میں ہوں کہ جی ہم یہ جتنی بھی چیزیں مشکل ہیں ہم کہنے نہیں ایسا نہیں ہے, ویسا بھی نہیں ہونا. آئی تھنک ریئلسٹک ایک ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹک ہونی چاہیے, اور جو چیزیں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے, اور اس کے اکارڈنگ پھر ہمیں اپنی اسٹریٹجی فوکس بنانا چاہیے.
अच्छा जो आप ये बात कर रहे हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा देखता हूँ, मुझे बाज़ों का हैरानी भी होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह बिहेव कर रही होती है ना। अच्छा ऑन द सरफेस यूँ लग रहा होता है कि बड़ी एनमिटी है, बड़ी हॉस्टेलिटी चल रही है, जिस तरह के वो टीवी चैनल्स पे बयान आते हैं, जलसों में जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं दोनों तरफ से होती है, अखबार वाले जिस तरह उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के सामने लाते हैं, अच्छा यूँ लगता है कि जैसे बड़ा कुछ, लेकिन फिर कहीं हो रहा होता है कि भाई अंदर मिल भी रहे हैं, वो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, तो दोनों ये पोस्चर चल रहे होते हैं उनके। अच्छा मुझे एक चीज़ इससे और ये याद आती है कि जो जो आपने बात की थी कि जब पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बढ़ी तो उनका वो कॉन्सेंसस जो था प्राइवेटाइजेशन पे दो बड़ी पार्टियों का, वो एक तरह से पीछे चला गया या ख़त्म हो गया
जब कॉन्फ्रंटेशन बढ़ी।
जी हाँ जी, तो अच्छा मुझे याद आता है कि जब 2010 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ,
हाँ जी,
तो अगरचे उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हुई थी लेकिन एक कॉन्सेंसस वो बड़ी ही, मतलब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस की डॉक्यूमेंट है।
बिल्कुल,
अच्छा वहीं से वो चीज़ें चली थी आगे आके ना, ठीक है उसमें दोनों मतलब पार्टियों की तरफ से मुख्तलिफ तरह की पॉलिटिक्स होती रही है, कुछ ब्रीच भी होती रही उस चार्टर की, लेकिन आज जब कुछ साल हो गए हैं और बल्कि मेरा ख्याल है अब 2 साल तकरीबन होने लगे हैं कि एक तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात शुरू हुई, अगर जो पहले भी होती रही थी लेकिन अब फिर ज़्यादा शद्दोमत से वो बातचीत हो रही है कि भाई पार्टियों को मिलके एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। इसका मतलब है एक दफ़ा फिर सारी हॉस्टेलिटी सारी कन्फ्रंटेशन के बावजूद उनके जहनों में कहीं है कि भाई हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए, लेकिन ये वो हैं जो अंडर करंट चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल हाँ जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा और दूसरे जो लीडर हैं उनके, अच्छा इसी तरह नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दूसरे लीडर जो वो भी सब कह रहे हैं, और इसके अलावा भी पार्टियां हैं वो भी बात करती हैं, सिविल सोसाइटी भी बात करती है, सारे ही करते हैं, तो एक ब्रॉड मतलब ब्रॉडर कंसेंसस इस चीज पे मौजूद है कि भाई हाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक साइन होना चाहिए। अच्छा अब मुझे यूँ मतलब ये प्राइवेटाइजेशन वाला जो इशू है मुझे बिल्कुल ये लगता है और इसमें एक रे ऑफ होप नजर आती है कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी का एक बड़ा नुक्ता एक बड़ा पॉइंट ये हो सकता है, आए भी एग्री करें इस पर, ठीक है इस पर एग्री कर लेते हैं हम कि भाई ये हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है
जी।
अच्छा और जब कोई होगी फर्ज करें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है मतलब फेडरेशन में या फेडरल गवर्नमेंट बनती है उनकी और या नून लीग की बनती, कोई पार्टी बाहर रह के मुखालफत नहीं करेगी, पार्लियामेंट के अंदर मुखालफत नहीं करेगी, सेनेट में मुखालफत नहीं करेगी या प्रोविंशियल असम्बलीज में कोई रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट नहीं पास की जाएंगी, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है?
देखिए ना जी, अब 2013 में चले जाएं तो शुरू में वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शुरू हुई जी, ठीक है ना जी, शुरू में वहाँ प्राइवेटाइजेशन भी हो रही थी, ठीक है जी। फिर ये जो 13-18 जो पीपल्स पार्टी की जो सॉरी मैं शायद आई थिंक 2008-13 ठीक है ना जी, ये पीपल्स पार्टी की, ठीक है ना जी, तो शुरू में प्राइवेटाइजेशन हो रही थी। फिर ये हुआ जो मुझे जो याद पड़ता है कि 2000 जो उनके टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गवर्नमेंट जब कॉन्फ्रंटेशन ज़्यादा होने लगी तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन की पेस भी रुक गई, और फिर ये कि जब 2013-18 जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो फिर एक कॉन्फ्रंटेशन का समा था, ठीक है ना जी, और जब कॉन्फ्रंटेशन का जब समा फिर होता है तो फिर आप जो भी आपको चीज मिले जिसको आप हथियार बना सकें उसको आप बना देते हैं,
जो हाथ में आए उठा के मार देते हैं,
तो वो इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, तो वो भी हथियार के जी ये देखें फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो कॉन्फ्रंटेशन में वो चीज उस तरह से खत्म हुई। अब आजकल जो है मैं ये समझता हूँ कि बात तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी वगैरह की हो रही है, और एक एक आप एक और जो चीज़ है बजवर्ड जो आजकल जो आप सुनते हैं वो जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना जी
तो जो, ये जो वो जनरल बाजवा की थ्योरी जिस वक्त से चलना शुरू हुआ है ना।
अच्छा अब ये आपने बिल्कुल सही आपको जो माइंड में जो आपको रिमाइंडर आया, तो ये एक्चुअली एक्सटर्नली एक्सटर्नल टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये फोकस डाला जा रहा है कि जी अच्छा वो पैराडाइम या स्टोरी ये है, नैरेटिव ये जो नजर जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी देखें पॉलिटिक्स में कॉन्फ्रंटेशन और मिसमैनेजमेंट और करप्शन वगैरह کی انتہا ہو گئی اور ٹو مچ پالیٹکس ہو گیا. اب صحیح راستہ یہ ہے کہ پالیٹکس 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 نہ ہو, تھوڑا پالیٹکس کو سائڈ میں رکھیں اور جیو اکنامکس اور ان کو لائیں. تو یہ تو ایک ایکسٹرنل چیز ہے وہ اس ٹائپ کی, وہ کہ جی اچھا کلاس میں بچے بہت شور کر رہے ہیں تو ان کو کھڑا کر کے اٹینشن پہ اور ان کو ڈسپلن کریں اور پھر صحیح لائن پہ لائیں, اس ٹائپ کی چیز ہے. تو تھوڑا یہ اندر سے نہیں آ رہے, کیونکہ پارٹیز تو جی ایگزسٹینشل ان کو اپنی تھریٹ ہے, مطلب تو سب سے بڑی جو پارٹی ہے ہماری آج کل وہ بالکل ہی چیلنجڈ ہے, بہت بہت زیادہ مشکل میں, اور دوسری پارٹیز میں بھی ڈسٹارشنز ہو رہے ہیں. تو یہ تو جی ایک بہت ہی اب نارمل ٹائم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی اور پالیٹکس کے لیے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس ٹائپ کے ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں. بہت ساری پروگرس جو ہم نے کی, ہم ایکچولی ہم ریورس میں چلے گئے ہیں. تو ہمیں وہ واپس آ کے وہ گراؤنڈ کور کرنا ہے, اور پھر یہ کہ ایکچولی جو مطلب جو ڈیموکریٹ بلڈ, اب دیکھیں نا ڈیموکریسی کے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز,
بالکل
ان کو اسٹرانگ ہونا ہے, ان کو کلیئر. اب یہ بات آپ نے پہلے کی تھی, یہ بہت ضروری بات ہے کہ جی پارٹی کی آئیڈیالوجی فلاسفی کہ جی ہے کیا, کہ جی پیپلز پارٹی کی کیا ہے, پی ٹی آئی کی کیا ہے, پی ایم ایل این کی کیا ہے, وہ کلیئرلی بتائیں, اور وہ ڈسٹنگوش ہونی چاہیے ایک سے دوسرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں یہ ایک جیسے ہی سب کچھ ایک جیسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ بڑا ضروری ہے.
ہاں جی شیڈز ہیں نا معمولی معمولی سا فرق ہے,
تو وہ یہ کہ وہ ضروری ہے, اسٹرینگنگ ضروری ہے, انٹرنل ڈیموکریسی ضروری ہے سب پارٹیز کی, اور پھر یہ کہ جب وہ پارٹیز اچھی طرح آپریٹ کر رہی ہوں گی, جو کہ پارٹیز کو خود ہی کرنا ہے, سٹیزنس کو کرنا ہے, سٹیزنس بھی زیادہ انوالو ہوں. اب ٹھیک ہے یہ کرائسس ٹائم ہے, اس کا حل یہی ہے کہ اس کو اس میں وہ انگیج ہوں, بھائی یہ ایک ملک کی سلامتی کی بات ہے, اور یہ پہلے فکس ہو, اور پھر یہ جو مختلف پالیسیز وغیرہ پہ کام کرنا کس طرح کرنا ہے, یہ ایک تھوڑی بات کی بات آتی ہے. اور پھر دوسری آئی ایم ایف دیکھ لیں, ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو ریکمینڈ کریں گے, وہ جو پالیسیز دیں گے, اکثر وہ ہماری بہتری کے لیے بھی ہوتی ہیں. ہمیں ایسا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جی آئی ایم ایف کی ہر چیز, لیکن ہمارے پاس اسپیس تو کم ہے نا جی, چوائس تو کم ہے, ہم اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہمیں وہ ماننا ہی پڑے گا. تو اس قسم کی سچویشن میں ہم ہیں, بٹ یہ پبلک یہ تو تھوڑا چلے گا, دو تین سال کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ فائنینشیل کرائسس اکنامک کرائسس چلے گی, اور پولیٹیکل کرائسس سب سے زیادہ. ان دا مین ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے اکیڈیمیا کا بھی مینشن کیا تھا, وہاں یہ ڈبیٹ ہو پبلک اسپیس میں ہو, ہمارے اخبارات میں یہ چیز ابھی تو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے,
مطابق نہیں ہے ایسا. اچھا ایک چیز جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی جو پرائیویٹائزیشن ہے نجکاری ہے, اس پہ پبلک میں ڈبیٹ نہیں ہوئی, نہیں لائی گئی وہاں پہ, حتیٰ کہ جو این جی اوز والے بھی کبھی کچھ کرتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں اس کے بارے میں, کوئی رپورٹ بناتے ہیں یا کوئی ایکٹیویزم کرتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے ان اپوزیشن ہوتا ہے. جب پرائیویٹائزیشن کمیشن یا کوئی بھی اینٹیٹی جو اس پرائیویٹائزیشن کے لیے بنتی ہے وہ کچھ کرنے کا کام اٹھاتے ہیں, کوئی بیڑا اٹھاتے ہیں, تو وہاں سے ادھر سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح میڈیا بھی جب انہیں ضرورت پڑتی تو پھر وہ ایک ٹاک شو کروا دیتے ہیں. اچھا لیکن چلیں وہ تو ان کا چوائس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی پرائیویٹائزیشن کو نجکاری کو ابھی ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے لوگوں میں لے کے ہی نہیں گئے. مطلب اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو جس طرح کی بھی الیکشن کیمپین چل رہی ہے, اس میں کسی پارٹی نے یہ بات نہیں کی, کہیں اندر ان کے مینیفیسٹو الیکشن مینیفیسٹو میں ذکر آ گیا ہوگا, لکھ دیا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا جبکہ یہ ایک طرح سے الیکشن کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب تمام لوگوں نے اپنی آنکھیں کان اپنے ذہنوں کو بالکل کھولا ہوتا ہے, بہت ریسیپٹیو ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے, یا اگر دینا ہے ووٹ تو کسے دینا ہے.
بالکل.
تو ایسی صورت میں تو دیکھیں نا, میں میرا ہمیشہ جو سٹینس رہا ہے, میں مطلب ایک طرح سے ذمہ داری جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈالتی ہوں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اگر وہ لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. دیٹ از وائی میں نے انہیں کہا کہ یہ پریشر گروپس بن جاتے ہیں, پریشر گروپ پاور گین کرنے کے لیے.
अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, आपने सही कहा। अब ये सही आप कह रहे हैं कि पार्टीज जो हैं वो ये चीज़ इसकी बात नहीं कर रही और ये चीज़ सामने नहीं ला रही, ठीक है ना जी। अच्छा अगर वो नहीं ला रही तो एक आइडिया ये है कि जो जैसे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं या सिविल सोसाइटी हो गई, वो एक प्रपोजल, सिटीजन्स प्रपोजल आप कह लें जी, सिटीजन्स प्रपोजल ऑन प्राइवेटाइजेशन कोई भी ग्रुप लाए, ठीक है ना जी, और वो कहे कि जी ये हमारा प्रपोजल है और हम चाहते हैं, हम उस सारी जो मेन पार्टीज हैं उनके पास जाएं, उन्हें कहें जी आप, हम आपको ये प्रपोज कर रहे हैं और आप जो है इस पर रिस्पॉन्ड करें और हम ये डॉक्यूमेंट करेंगे कि जी इस प्रपोजल पे आपका क्या रिस्पॉन्स है, और अगर आप हमसे हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो हम ये भी नोट कर लेंगे कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, ठीक है। और बाय द वे वो जो दूसरी पार्टी है, हम उनके पास गए थे और उन्होंने हमारी बात सुनी थी, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था, तो आप ये सोच लें कि जब ये चीज बाद में मीडिया में आएगी तो फिर आपका शुमार उन पार्टीज में से होगा जो बात ही नहीं सुन रहे या जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो ये एक मेरे ख्याल में एक किस्म का पीयर प्रेशर का टाइम है, इलेक्शन से पहले यही टाइम होता है, पता नहीं 22 दिन रह गए हैं कि जितने भी हैं, तो उसमें ये हो सकता है।
अच्छा इसमें फिर वही बात आ जाती है कि देखें थिंक टैंक्स प्राइम जब से बना है उस वक्त से प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। प्राइम ने मेरा ख्याल है उतना ज्यादा काम शायद पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया होगा जितना प्राइम इंस्टीट्यूट ने या दूसरे थिंक टैंक के इपरी, उन्होंने भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम किया है। अच्छा बहुत
स्कोर कार्ड भी एक रिपोर्ट कार्ड देते थे पार्टीज को, हां जी आपको याद हो।
अच्छा फिर जो मतलब इंडिविजुअल जो एनालिस्ट हैं या राइटर्स हैं वो भी उन्होंने भी लिखा है इस पे और बहुत काफी मजामीन छप चुके हैं, दूसरे लोगों ने भी बात की है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इतनी बात तो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी नहीं किया ना उस पर फोकस किया ना आपस में कोई मीटिंग्स की। अच्छा ये जो बात आप कर रहे हैं ये भी प्राइम इंस्टीट्यूट का एक बना हुआ है इस तरह का प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, बल्कि हम कर रहे हैं जैसे वो ज्यादा उसका मतलब स्कोप उसका थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी में और चीज़ें भी शामिल हैं उसमें, टैक्स रिफॉर्म जैसे शामिल है, टैक्सेस को लो करने की बात भी शामिल है, प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन चले सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, मतलब मैंने इसलिए कहा था कि जिम्मेदारी तो असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी भी जो असल इश्यूज हैं उन पे पॉलिटिक्स नहीं करती हैं, तो थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा ब्लेम उन्हें देना चाहिए। थिंक टैंक्स तो ये काम कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, प्राइम इंस्टीट्यूट बिल्कुल ये करना चाह रहा है, पॉलिटिशियंस के साथ एंगेज कर रहे हैं, हम जाके बात कर रहे हैं, उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात भी शामिल होती है।
अच्छा इसमें जैसे ये आप सही कह रहे हैं कि ये हो रहा है, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ें सही अप्रोच नहीं है जिस वजह से इतनी सक्सेस, आप मैं थोड़ा सा ब्लेम सब पे डालूंगा इंक्लूडिंग थिंक टैंक्स, ठीक है ना जी। अच्छा ये जो थिंक टैंक्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, डिप्लोमेट्स हो गए, मीडिया अनफॉर्चुनेटली अपने अपने बबल्स में ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना जी। अब जैसे थिंक टैंक्स हैं वो रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं या पब्लिकेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जी सेमिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उसमें लोगों को बुला रहे हैं, गवर्नमेंट से भी लोगों को बुलाते हैं, पार्टी से बुलाते हैं, अक्सर नहीं आते, मायूस हो जाते हैं कि जी ओहो नहीं आए, लेकिन वो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इतनी कोशिश नहीं होती कि एक्चुअल पार्टीज़ की जो अपर जो मतलब मैनेजमेंट कह लें या जो ड्राइविंग जो एक लेयर होता है स्टीयरिंग कमिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वहाँ तक पहुँच उनको किसी तरह से इंगेज किया जाए और उन तक पहुँचा जाए और उनके साथ एक इंगेजमेंट और एक डायलॉग हो
जी।
अब मेरे ख्याल में ये रिसर्च प्रोड्यूस करने और वर्कशॉप्स वगैरह करने से बात नहीं बन रही, तो कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अब जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जी इलेक्शन जैसे हो गए तो हमारी नेशनल असेंबली है तो उसमें कमिटीज भी होती हैं, ठीक है ना जी, तो अब उनको अक्सर मतलब सपोर्ट नहीं होती उनके पास, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ों पे फोकस कर सकें और उनकी जैसे लेजिस्लेशन पे बैकग्राउंड रिसर्च कर सकें, तो वो एक मतलब तरीका है कि जी एक कमेटी है उसको आप सपोर्ट करें ताकि फिर वो कमेटी एम्पावर हो और वो अपना काम करे। तो इस किस्म की चीज़ें कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा। अभी देखें, मैं भी ये थिंक टैंक्स और इंक्लूडिंग प्राइम और फिर हमारे ये इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप भी है, तो ये नया है, इसमें हम थोड़ा मुख्तलिफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपने उस बबल से नहीं निकल पा रहे।
अच्छा, ये जो आपने बात की है, मैं खुद ये समझता हूँ, बल्कि अभी अली सलमान जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्राइम इंस्टीट्यूट के, वो और मैं हम एक सेनेटर से भी मिले थे और बिल्कुल सेम बात हमने उनके सामने रखी। हमने उन्हें कहा भाई हम हाजिर हैं, हमारी सर्विसेज, आप किसी इशू पे, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स का इशू है, प्राइवेटाइजेशन का इशू है, टैक्सेस का इशू, आप हमें बुलाएं, हम आपको आके एक ब्रीफिंग देंगे। अच्छा, लेकिन देखिए ना, अब उन तक हम रसाई हासिल, आपको पता है रसाई हासिल करना भी मुश्किल होता है।
जी,
और दूसरा बात ये कि क्या उन्हें ज़रूरत भी है हमारी, एक ये इशू भी बन जाता है। तो ये एक तरह से यकीनन जो एक फासला है, उस फासले को किसी ना किसी तरह से ब्रिज करना पड़ेगा। कैसे होगा, यकीनन मुश्किल काम है।
जी, जी,
अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और, जो अब ये जैसे आपने कहा था अपनी एक ये आइडिया आपने पेश किया, एक मेरे भी जहन में चीज़ है थिंक टैंक्स के बारे में, और मैं कुछ इस पर बात करता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ, कि जैसे एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, और पब्लिक इंटेलेक्चुअल की डेफिनेशन ये की जाती है कि ऐसा इंटेलेक्चुअल जो असल में पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, जिसके मुखातिब जो हैं वो लोग हैं, ना वो गवर्नमेंट है, ना कोई और है, ना कोई और है।
ठीक है।
अच्छा, इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट है यहाँ की, उसमें थिंक टैंक्स जो हैं, इसी जैसे आपने भी कहा कि इफेक्टिव नहीं होते, इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि थिंक टैंक का एक पब्लिक फेस सामने नहीं आता है। तो मैं मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि थिंक टैंक्स को एक तरह से उन्हें पब्लिक थिंक टैंक्स होना चाहिए, उन्हें अपना फेस एक चेंज करके पब्लिक को एड्रेस करना होगा। जो पब्लिक एक तरह से देखें, पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, हमने अभी तक थिंक टैंक्स ने कोशिश की है कि जो जैसे प्राइवेटाइजेशन वाला मामला है, अच्छा जी, गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में रेगुलेशंस में उनकी जो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसमें कहाँ क्या खामी है, क्या रुकावट है, क्या लूप होल है, क्या चीज़ है, या क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि तेज़ी के साथ प्राइवेटाइजेशन हो सके। हम एक तरह से वी आर हेल्पिंग आउट द गवर्नमेंट, लेकिन हमें थोड़ा सा अगर इसी इशू को लेके हम पब्लिक को भी एड्रेस करें कि प्राइवेटाइजेशन अगर नहीं होती तो लोगों को क्या नुकसान हो रहा है उसका, मेरे ख्याल में शायद इस पर बहुत कम लिखा गया होगा या बहुत कम बात हुई होगी।
सही है, सही। नहीं, आप सही कह रहे हैं। इसमें देखें कुछ वजूहात हैं मेरे ख्याल में कि चीज़ें इस तरह से होती हैं। एक तो मैं समझता हूँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि थिंक टैंक्स एक तरफ से काम भी चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो फिर जो अगर क्रिटिसाइज़ करना है गवर्नमेंट पॉलिसी को या खुल के बात करनी है तो वो डिपेंड करता है मेरे ख्याल में। तो एक मुख्तलिफ किस्म के थिंक टैंक्स हैं, कुछ जो हैं वो जो जिनका बिजनेस मॉडल इतना ये ऐसा नहीं है तो वो फिर ज़्यादा ओपन क्रिटिसिज्म करते हैं, जिनका ऐसा है तो वो फिर थोड़ा लो प्रोफाइल रखते हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं चाह रहा था, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक दो चीज़ें हम मतलब थोड़ा सा इनडेप्थ चले जाएं, क्योंकि ये एक मौका है इस पे रोशनी डालने का। तो प्राइवेट चलें, अभी तो जैसे प्राइवेटाइजेशन पे उस तरह का फोकस नहीं हो रहा और एक पब्लिक स्पेस में बात नहीं हो रही, लेकिन अगर ये होने लगे तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए? इन माय ओपिनियन, मैं क्या समझता हूँ, तो उसमें दो तीन चीज़ें मैं कहना चाह रहा था। एक तो ये जी, देखें प्राइवेटाइजेशन के लिए स्पेशली अगर जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ प्राइवेटाइज हो रही हैं, जो पब्लिक सर्विसेज जो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं वो कंपनीज हो रही हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रेगुलेटर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और ये 90s में हमने इस तरह ये जर्नी शुरू की थी कि जी पूरे सेट ऑफ रेगुलेटर्स बनाए थे, लेकिन वो फिर चीज़ बीच में ही रुक के रह गई। रेगुलेटर्स बंद तो गए लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हो सके, और वो कैप्चर फ्रॉम टाइम टू टाइम वो कैप्चर हो जाते हैं बाय गवर्नमेंट और बाय डिफरेंट लाइन मिनिस्ट्रीज, और बाद बिल्कुल ही डिसएम्पावर हो जाते हैं। तो ये एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि देखें ना जी, प्राइवेटाइजेशन مطلب بہت مختلف قسم کی پرائیویٹائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ایک تو آپ یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے سٹیزنس کو, آئی تھنک ہماری یہ کانورزیشن بھی تھوڑی ہو چکی ہے پہلے, کہ جیسے ایسٹرن یورپ میں کہ جی آپ نے سٹیزنس کو شیئرز دے دیے, رائٹ, اور آپ نے سم ہاؤ اونرشپ جو ہے آپ جلد از جلد چاہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سے وہ چل شفٹ ہو جائے اور وہ سٹیزنس کے پاس آ جائے یا پرائیویٹ اینٹیٹیز کے پاس آ جائے. اور ایک پھر یہ ہوتی ہے کہ جی جو بزنسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, جو لوکل پرائیویٹ سیکٹر ہے جیسے پاکستان میں, وہ آگے آئے اور وہ اینٹیٹیز خریدے اور وہ میجورٹی اسٹیکس اس میں ان کو ان میں خریدے اور وہ ان کو رن کرے. اور ایک فورتھ یہ ہو گیا کہ جی باہر سے بھی لوگ آئیں, یا تو وہ اکیلے خرید لیں میجورٹی اسٹیکس اور وہ رن کریں, یا وہ ان پارٹنرشپ ود لوکلز میجورٹی اسٹیکس لے لیں اور رن کریں. اچھا اب میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ دیکھیں پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کا کافی ٹریڈیشن ہے. پاکستان ایک بیسکلی مارکیٹ اکانومی بزنس, مطلب جس میں ایک ڈائنامک بزنسز جو ہیں وہ فلرش انہوں نے کیا ہے, جیسے سکسٹیز میں ففٹی سکسٹیز میں کر رہے تھے, سیونٹیز میں چیلنجز آئے. تو وتھ دیٹ بیک گراؤنڈ, اور ہمارا اسٹاک ایکسچینج بھی پہلے سے ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو ہم اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے جہاں ہمیں کوئی اس قسم کا ڈراسٹک میجر لینا چاہیے کہ جی سٹیزنس کو ڈائریکٹلی کر دیں. کیونکہ ہم دو, اگر آپ لیں کہ جی دو آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں میرے خیال میں, ایک آبجیکٹیو تو پرائیویٹائزیشن کا یہ مین ہونا چاہیے کہ جی جو کمپنیز ہیں وہ بہتر مینیج ہوں, ٹھیک ہے نا جی. ابھی جس طرح گورنمنٹ سے اگر وہ مس مینیج ہو رہی ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان دا بزنس آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو, تو اگر یہ ایک آبجیکٹیو ہے کہ بہتر مینیج ہوں, تو اگر صرف وہ ہو جائے گا ٹرانسفر, اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے گی ٹو سٹیزنز, تو اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ورس حالات ورس ہو جائیں, کیونکہ جہاں ایک مطلب روڈمنٹری قسم کی مینجمنٹ تھی, اب یہ ہے کہ وہ بالکل سٹیزنز کے پاس وہ اونرشپ آ جائے گی, اور پھر ایک قسم کا کیوس ہوگا, اور اس کیوس کے بعد شاید کچھ اسٹرکچر نکل سکے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ایک آبجیکٹیو سرو نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ سے اگر اونرشپ ہٹنی ہے تو ایک دوسرا یہ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں گیون پاکستان کا بیک گراؤنڈ اور ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر اسٹرانگ رہا ہے, ٹریڈیشن ہے, تو یہ پرائیویٹ اینٹیٹیز کو آگے آنا چاہیے اور یہ اس میں حصہ لینا چاہیے. ظاہر ہے اس میں کوئی ایکول اپرچونیٹی وغیرہ کا بھی کرائیٹیریا ہونا ضروری ہے, اور یہ کہ ریگولیٹری فریم ورک پہلے بنانا, اسٹرینگتھن کرنا بہت ضروری ہے, اور پھر باہر سے بھی میرے خیال میں ہمیں اوپن ہونا چاہیے کہ باہر سے بھی انویسٹرز آئیں اور ان پارٹنرشپ کریں. اور ایک آج کل ایک تھوڑا سا مطلب ٹرینڈ کہہ لیں یا تھنکنگ ایسی لوگوں کی, کچھ لوگوں کی ہے کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ, ہماری جو رجیم ہے وہ کچھ زیادہ ہی اوپن ہے, کہ ہم الاؤ کرتے ہیں کہ جی 100% تک آ کے جی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ فار سم فیو ریسٹرکٹڈ سیکٹرز, اور پھر پروفٹ بھی آپ پورا ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر دوسرے ملکوں کا اگزامپل دیا جاتا ہے کہ جیسے انڈیا کو لے لیں, اور تو جی وہاں ایسا نہیں ہے, ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جی ہمیں جوائنٹ وینچر کی شرط لگانی چاہیے, اور ہمیں جی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی شرط لگانی چاہیے. تو میں ایکچولی اس سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری اسٹرینگتھ ہے, یہ اس ٹائپ کی چیز ہے کہ ٹھیک ہے اس میں ڈینجر تو ہے کہ آپ مطلب پیسے جو ہیں وہ انویسٹرز باہر نکال لیں گے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوگا, لیکن یہ ہمارے اوپر ہے. اگر یہاں اکنامک اپرچونیٹیز اچھی ہوں, بزنس انوائرمنٹ اچھی ہوں, تو وہ انویسٹرز پیسے, وہ تو اور پیسے لائیں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک آرٹیفیشل طریقہ استعمال کرنا کہ نہ جی ٹانگ باندھ کے نہیں جی پیسے آپ ادھر ہی رکھیں, اس سے کچھ یہ ایک مارکیٹ پرنسپلس کے ویسے بھی خلاف ہے. اور پھر جی جی, اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی اگر اس کی شرط لگائی جائے تو اس سے نہیں ہوتا. یہ جب اس کا اکنامک سینس بن رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. تو جو ہماری اچھی چیزیں ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جی دوسروں کے ایگزامپلس دیکھ کے. اب ہر مختلف کنٹریز میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. تو ہمیں بہت آج کل ایک روش آئی بھی ہے کہ جی چینج ساری چیزیں چینج کر دیں, تو وہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے, جو اچھی چیزیں ان کو رکھنا چاہیے.
نہیں آپ کی بات یہ صحیح ہے, بلکہ آپ نے کہا نا اسٹرینتھ ہے, میں کہوں گا ایک طرح سے یہ ویکنیس بھی ہے کہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر ہم نہیں کر سکتے. انڈیا کی مارکیٹ, انڈیا کا جو سمجھیں ایک طرح سے پورا اسٹیٹس اس کا, اور پھر ہمارا, اس میں بڑا فرق ہے. ہم جس سٹیج پہ ہیں ہمیں تو اس پہ رہ کے دیکھنا ہے کہ بھئی ہمیں تو انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے, ان کو انسینٹیو دینے ہیں. اس میں ہم کر سکتے ہیں, جیسے کہ فرض کریں کہ جیسے مطلب فرض کریں وہ 100% اگر ان کا اپنا پروفٹ جو ہے وہ لے جا رہے ہیں, تو اگر انہیں یہ نظر آئے گا کہ بھئی 100% میں سے 10% ہم یہاں دوبارہ ری انویسٹ کر دیں,
بالکل
چلیں جی ہم 50% اور یہاں پہ نئی ٹیکنالوجی لیں, لیکن وہ بزنس سینس ان کی اگر بنے گی تو کریں گے نا, زبردستی تو کوئی نہیں کریں گے کرے گا اس کو چیز کو. اچھا مجھے یاد آتا ہے احمد فراز کا شعر, اور بڑا ہی زبردست شعر ہے یہاں پہ. اچھا ہماری مطالبات ایسے ہوتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا کے پتہ نہیں کوئی بڑے کیریزمیٹک قسم کا ملک ہے اور سب کو آ کے یہاں انویسٹ کرنا چاہیے اور ہماری شرائط پہ انویسٹ کرنا چاہیے. مثلاً یوں سمجھ لیں کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کوئی ہمیں قرضہ دے آ کے اور ہماری شرائط پہ قرضہ دے آ کے, کہ بھائی اس طرح کیوں لے لیا آپ نے, ایل این جی ہم لاتے ہیں تو ہم اپنی شرائط پہ لیں, بھائی اس طرح نہیں ہوتا. تو احمد فراز کا شعر یہ ہے کہ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں, ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں, اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. بھائی جہاں پہ آپ موجود ہیں, جہاں پاکستان موجود ہے, جہاں جس سٹیج پہ جو حال ہے یہاں کا, جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ, جیسے پائٹ کی اسٹڈی کے مطابق تقریباً 70% گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے, وہاں کوئی آ کے کیوں انویسٹ کرے گا؟ جو آ کے انویسٹ کر رہا ہے شکر کریں اس نے انویسٹ کیا ہے,
بالکل,
بجائے اس کے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں.
جی جی جی,
تو یہ یقیناً ہمارے یہاں ایک ایشو موجود ہے, اور اسی سے میں کہوں گا تھوڑے سے اچھا بڑے ہمارے امپلسیو ایٹیچیوڈ بھی موجود ہیں, کیونکہ ایک کنسسٹنٹ تھنکنگ نہیں ہے چیزوں کے بارے میں, اور اس میں بڑی کنٹرڈکشنز ہیں ہماری تھنکنگ میں. مطلب ہماری سے مراد یہ کہ جیسے پرائیویٹائزیشن کے بارے میں مطلب پولیٹیکل پارٹیز کی تھنکنگ, این جی اوز کی تھنکنگ, لیبر یونین یا ٹریڈ یونین جو ہیں ان کی تھنکنگ, اچھا میڈیا ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں, انالسٹ بیٹھے ہیں, انٹلیکچوئلس بیٹھے ہیں, ان کی تھنکنگ, اچھا پھر اور جتنے بھی ہمارے یہاں کے اوپینین سرکلز ہو سکتے ہیں, ان سب کی تھنکنگ بڑی امپلسیو ہے, اور اس میں کہیں یہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہی جو میں نے بات کی کہ ہم کوئی بڑے خاص لوگ ہیں, تو سب کو آ کے نا ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے ہمارے سامنے, اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ اس طرح کرنا چاہیے انہیں نا.
ویسے بائی دی وے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تھوڑا سا اس سے اس طرح سے ڈس ایگری کروں گا کہ ہم جیسے اگر آپ ٹیکنالوجی سیکٹر کو دیکھ لیں
جی,
تو یہاں کافی وینچر کیپٹل جو فنڈز ہیں ان کی نظر ہے, اور یہاں میرے خیال میں ایک دو سال پہلے ایک ایسا ایئر تھا کہ کافی پتہ نہیں 300 or 400 million dollars آئے تھے وینچر کیپٹل کے. تو اور میں پھر ان فنڈ سے میرا کیونکہ تھوڑا اسٹارٹ اپس وغیرہ کی میں ایریا میں رہا ہوں تو ان سے کانٹیکٹ میرا رہتا ہے, تو فنڈس تو یہاں آئے میں ہیں, مطلب پریزنس ان کا ہے اور وہ بہت ایک کڑی نظر رکھ رہے ہیں اور وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز جو ان کو وہ روک رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لوکل انویسٹرز جو ہیں انہوں نے ہاتھ روکا ہوا ہے, تو ضرور کوئی وجہ ہوگی, ہم تو یہ کلچر سوسائٹی اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح لوکل سمجھتے ہیں, اب اگر لوکل جو ہیں وہ رکیں تو ہم بھی رکیں, تو وہ آئے ہوئے تو ہیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں ہم انڈیا بنگلہ دیش سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ایک چیز, ایک تو یہ کہ یہاں مارکیٹ سیکنگ انویسٹمنٹ بہت آتا ہے کہ جی وہ بھائی 2.5 million لوگ ہیں تو اوہو جی زبردست مارکیٹ ہے اور یہ مارکیٹ پروٹیکٹڈ بھی رہتی ہے, تو بس اس میں گھس جاؤ यहाँ चीज़ें बनाओ और इसी इन्हीं को बेचो, और अगर वो चीज़ें सेकंड स्टैंडर्ड की थर्ड रेट भी होंगी तो क्योंकि इतना प्रोटेक्टेड कंट्री है उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है, वो तो खरीद बेचारे खरीदेंगे ही, ठीक है ना जी। तो ये मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट आती है, हालांकि आनी चाहिए, ठीक है, ये भी सारी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कुछ ओवरनाइट तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, लेकिन अगर एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कि जी ओहो ये देखें जी ये जगह है पाकिस्तान,
बिल्कुल
यहाँ ये बनाने की जगह है, यहाँ जाएं यहाँ मैन्युफैक्चर करें, इनकी मार्केट भी बड़ी है, वहाँ टेस्ट भी हो जाएगा, ट्राई भी हो जाएगा, उनको भी बेचें, लेकिन फिर रीजन को बेचें, दुनिया को बेचें, तो ये इसमें हमें आना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लिंकेजेस जो हैं ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, तो अब जैसे बांग्लादेश और इंडिया भी, और ख़ासतौर पे रिसेंटली बांग्लादेश, वो वहाँ ये होता है कि वहाँ बैकवर्ड लिंकेज ज़्यादा है मेरे ख्याल में, कि जैसे वहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ आता है और उसमें वो वैल्यू ऐड करके वो आगे भेजते हैं, और यहाँ ये ज़्यादा ये होता है कि हम रॉ मटेरियल बेचते हैं और वो कहीं और जाके उसमें वैल्यू ऐड होती है और वो फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें ये जो जो बांग्लादेश वाला मॉडल है इसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, और जाहिर है फिर ये टैरिफ्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, प्रोटेक्शन क्या है।
अच्छा, जो आपने जॉइंट वेंचर वाली बात की है, उसमें जब लोकल इन्वेस्टर को बाहर के इन्वेस्टर देखते हैं, सीधी सी बात है, वो उन्हें देखेंगे भाई ये तो लोकल हैं तो इनको तो ज़्यादा पता है, ठीक है ना, तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और वो हम जानते हैं हमारे यहाँ जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा मौजूद है। एक जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, अदरवाइज हर चीज़ के लिए ज़रूरी, वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। हमारे यहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, मतलब 8 तारीख को अगरचे इलेक्शन होने, हमें सबको पता है और वो सब मतलब अक्सर लोग बता भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है होने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वो खदशा से मौजूद है कि पता नहीं होने के नहीं होने हैं। तो ये चीज़ जो क्रिएट कर दी जाती है चीज़ों के बारे में, तो यकीनन वो फिर किसी के भी पांव जमने नहीं देती। लोकल इन्वेस्टर जो है, सीधी सी बात है, जब एक बाहर के इन्वेस्टर देखेंगे कि लोकल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें फिर जाके वहां पे।
अच्छा इसी पॉइंट पे इसको, इसका एक पॉजिटिव एंगल है, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं एग्री करता हूं प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, इसका पॉजिटिव एंगल ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है बहुत अरसे से, ठीक है ना जी, कंटिन्यूसली चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम सरप्राइज होते हैं।
सही।
तो अब यहाँ जो लोग हैं वो जाहिर है यही एनवायरनमेंट है जिसमें उनको ऑपरेट करना है, तो वो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी को डील करने के, जाहिर है उनको स्किल सेट उन्होंने बिल्ड किया है और वो उसे डील करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। और तो जो बाहर से जो लोग आते हैं, एटलीस्ट उनको ये पता है कि भाई ये वही वाली बात है कि जैसे आप मैराथन आपको भागना है ना, तो आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे जाके आप ट्रेनिंग करेंगे ताकि आपकी उस ऑल्टीट्यूड के मुताबिक आपकी लंग्स जो हैं वो क्लाइमेटाइज हो जाएं, तो फिर जब आप उस पर सी लेवल पे आएंगे तो आप तो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वो एक तरह से ये आप ऐसे समझ लें कि हम एक ऐसे जिम में हैं जिसमें हम बहुत हैवी वेट्स उठा रहे हैं, तो हमारी हालत तो ख़राब हो रही है लेकिन मसल भी बन रहे हैं।
अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ना डिफर करूँगा कि जो स्किल सेट हमने लर्न किया है, जो अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट है, उसमें जो चीज़ लर्न की जा सकती है वो है हुकूमत के साथ जुड़े रहो, ठीक है ना, स्टेट के साथ जुड़े रहो, पता रहे अंदर से क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या हो रहा है, अपनी चीज़ें उनके साथ जोड़ के किसी तरह एक कम्प्लिसिटी पैदा कर लो और देखते रहो और अपने मुताबिक चीज़ें करवाते रहो और उनके मुताबिक कुछ करते रहो थोड़ा सा, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें एक नेगेटिव स्किल सेट हमने लर्न किया है।
आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक मॉडल है और ये थोड़ा सा पुराना वाला मॉडल है कि जी जितना आप रहेंगे और जो रेंट सीकिंग आप करेंगे तो आप फिर हैंडआउट्स डोल आउट्स आप मांगेंगे और वो आपको मिलेंगे, तो आप ज़बरदस्त चलेगा काम। अच्छा, दूसरा मॉडल ये है कि आप ऐसी स्पेस में ऑपरेट करें जहाँ स्टेट का कम से कम दखल हो, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए समाओ ग्लोबल लिंकेजेस बना के आप ऐसी अपनी एक स्पेस बना लें जिसमें स्टेट का कम से कम दखल हो और आप पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है आप पाकिस्तान में लोकेटेड हैं लेकिन वो ریلیونسی اس کی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی کہاں بھی لوکیٹڈ ہے, اور پھر یہ کہ فائنینشلی بھی, مطلب اس کے نقصان بھی ہوتا ہے کہ ٹیکس ریونیو نہیں پکڑ پاتا کنٹری, لیکن یہ حقیقت ہے کہ مختلف طریقے ہیں کہ جی آپ کے وہ ریونیوز بھی آپ ان جگہوں پہ لے جاتے ہیں یا اس طرح سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے وہ ٹیکس میں نیٹ میں نہ آئیں. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کورین کمپنی تھی, تو وہ ایک ایسے سیکٹر میں تھے, میں نام نہیں لیتا, کہ جہاں اسٹیٹ کا بڑا دخل تھا. تو وہ انہوں نے وہ وہاں سے سیکٹر سے نکل آئے, اور ان کے سی ای او نے کہا جی ہم نے توبہ کی ہے, ہم کہ ایسے سیکٹر میں ہم نہیں جائیں گے, اور ہم دوسرے سیکٹر میں جا رہے ہیں جہاں اسٹیٹ کا سب سے کم دخل ہے, ہم جانا چاہ رہے ہیں. تو ان کا یہ ایک طریقہ تھا, لیکن آپ بہت سے لوگ ہیں جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں وہ بھی بہت سے, لیکن وہ تھوڑا سا اولڈر وے ہے. اب یہ جو ساری ٹیکنالوجی اور یہ جو فری لانسرز, تو خیر انڈیویجول ایک فری لانسرز کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرح سے وہ ایک کامیابی بھی ہے کہ انڈیویجول یہ سارا مطلب کر رہے ہیں, لیکن ایک طرح سے ایک یہ ناکامی بھی ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کی, کہ کیونکہ ہماری کمپنیز کے سٹرکچرز اتنی اچھی طرح سے بن نہیں سکتے اور وہ کمپنیز پراسپر نہیں کر سکتی, تو اس وجہ سے یہ لوگ ایز انڈیویجولس کام کر رہے ہیں. تو یہ چلیں, یہ بھی ایک اچھا سٹارٹ ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نیکسٹ سٹیپ ایسا ہو کہ آئی ٹی کمپنیز کو اتنی سپورٹ ملے اور اتنے ان کے لیے اتنی اچھی انوائرمنٹ ہو کہ یہ بہت زیادہ سے زیادہ یہ جو فری لانسرز ہیں, انڈیویجولز جو ہیں, وہ اس میں اس سٹیج پہ جائیں.
دیکھیں وش ہی کر سکتے ہیں ایسا ہو, ہمیں پتہ ہے کتنے سارے انیشیٹو جو ہیں پاکستانی لوگ ہیں, لیکن وہ انیشیٹو باہر جا کے, کیونکہ یہاں کی جو ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اور جو گورنمنٹ کی انوائرمنٹ ہے ساری, مطلب پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے, اس میں وہ نہیں کر پاتے ایسا نا. اچھا ایک بات جو بڑی انڈیا والے خود بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھا ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور اکثر اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ دیکھیں جی امریکہ میں جتنی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز اس وقت بنی ہوئی ہیں ان کا کو جو ہیڈ ہے اور یہ ہے اور وہ سب انڈیا. میں اسے دوسری طرح دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ انڈیا میں کیوں نہیں بن سکے وہ کچھ, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا. لیکن اب پولیٹیکل باؤنڈریز بہرحال میٹر کرتی ہیں, انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے اس نے کیا وہاں پہ انوائرمنٹ دیا ہے, ریگولیٹری انوائرمنٹ کیا ہے, بزنس انوائرمنٹ کیا ہے وہاں کا, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کیوں باہر جا کے بنے. لیکن بہرحال انڈیا
میں
ایڈ کر دوں اس میں کہ وہ جو ہے کہ لیکن انڈیا کے اندر بھی ہوئی ہیں چیزیں, امریکہ گئے ہیں لوگ اور وہاں سے آ گئے وہ یہاں پہ, اور آ کے جنہیں ہم کہیں نا تو انڈین جو یونیکارنز بیٹھے ہیں اس وقت انڈیا میں, اور اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً وہ شارک ٹینک جو انڈیا کا آتا ہے ٹی وی پہ, مطلب حیران کن ہے. اور وہ وہی چیز ہے کہ ڈسپائٹ دا پریزنس آف دا گورنمنٹ وہ انہوں نے وہ چیزیں کی ہیں وہاں پہ. اچھا ایک چیز اور آپ نے جو کہا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک مجبوری کے انوائرمنٹ میں پازیٹیو اسکل سیٹ کیسے سیکھ بن سکتا ہے کچھ چیزیں نکالنے کے, لیکن جیسا آپ نے کہا کہ وہ کورین کمپنی تھی تو وہ ایسے سیکٹر میں جہاں جو ہیویلی ریگولیٹڈ تھا یا گورنمنٹ کی پریزنس بہت زیادہ تھی, اس سے نکل کے وہ وہاں چلے گئے جہاں گورنمنٹ کی پریزنس کم تھی. اچھا لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا, وہ سیکٹر جہاں پہ گورنمنٹ کی پریزنس کم ہے سیچوریٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. کتنی گنجائش ہوگی کہ کیا جا سکتا ہوگا؟
دیکھیں کپل آف تھنگس, ایک تو یہ کہ میں تھوڑا سا آپ کو میں کیوں پاکستان واپس آیا, ایک اس سے لنکڈ ہے یہ, ٹھیک ہے
جی. ہاں بتائیے.
اچھا جی, تو ایز این آنٹرپرینیور سب سے زیادہ کیوٹک, سب سے زیادہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک خاصی کیوٹک جگہ جہاں بہت سارے پرابلمز ابھی بھی انسالوڈ ہوں, وہ ایک آنٹرپرینیور کے لیے ایک طرح سے وہ ایک ہیون ہے, کیونکہ جتنے پرابلمز ہیں اتنی اپورچونیٹیز ہیں. اور پھر یہ کہ جو ایک کیوٹک جگہ ہوتی ہے یا جہاں آپ اسٹرکچر اتنا نہیں ہے, اور اگر آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو اس کا سوچنا آپ کو ہے, اس کا اسٹرکچر بنانا ہے, اس کو امپلیمنٹ سارا کچھ آپ کو خود کرنا ہے, تو یہ آنٹرپرینور انٹرسٹیڈ ہی اس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ ایک جیسے یو ایس اے میں وہ کافی اسٹرکچرڈ وہاں مطلب انوائرمنٹ ہے, تو وہاں آپ کو اتنی کھلا وہ فیلڈ نہیں ملتی ٹو آپریٹ, اور اکثر آپ کو ود ان اے سرٹن اسٹرکچر آپریٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ اٹریکٹیو. اور دوسرا یہ کہ آپ وہ سیچوریشن کی بات کر رہے تھے, صحیح, جیسے فوڈ سیکٹر لے لیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا جی, وہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں وہ تھوڑا سا वो भी है, इंसुलेटेड भी है इकोनॉमिक, बल्कि जब डाउन टर्न होता है तो लोग ज्यादा ही खा रहे होते हैं टेंशन में, तो वो उसमें काफी लोग फूड सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो इसी में जा रहे हैं, और वो भी एक मतलब अच्छी बात है कि हम उसमें सोफिस्टिकेशन आ रही है, लेकिन हमारे जो दूसरी जो लाइट इंजीनियरिंग और जैसे ऑटोमोबाइल्स और ये जिसमें यहाँ एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हो वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो सही कह रहे हैं आप, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तरह से तो जहाँ भी जिन सेक्टर्स में मतलब जो अट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ गवर्नमेंट यू नो इंटरफेरेंस कम है वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, लोकल भी लोग इन्वेस्ट करें। लोकल मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं जब यहाँ, ठीक है रियल एस्टेट में देखें एक ये लॉजिकल चीज़ भी है कि लोग क्यों रियल एस्टेट में ज़्यादा जाते हैं कि भी उनको बड़ा उन्होंने बड़ा फ़ायदा हुआ है उनको, बड़े उन्होंने वेल्थ क्रिएट हुई है, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होती है और यहाँ भी हुई है, और यहाँ भी वेल्थ क्रिएट की उन्होंने, दुबई में भी इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट हुई है। बट इसके दो नुकसान हैं, एक तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा फोकस रियल एस्टेट की तरफ जाए तो जाहिर है फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर एक बहुत निग्लेक्टेड, मैं समझता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर पे ही हमारा फोकस हो जाए तो ये एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को निकाल सकता है, एक एक्सपोर्ट्स निकाल सकती है, एग्रीकल्चर निकाल सकता है फ्रॉम द डोल्ड्रम्स जो अभी हैं। तो दूसरा नुकसान एक तो ये कि डाइवर्जन हो गई सारा का सारा कैपिटल, और अगर वो सिर्फ लैंड में चला गया तो वो तो बिल्कुल ही फंस गया, आपने जी प्लॉट्स खरीद लिए या आपने लैंड खरीद लिया और वो लैंड पड़ा हुआ है ना, उससे उसमें जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो दैट्स द वर्स्ट। और फिर उससे दूसरा नुकसान जो ये है कि जी वो लैंड जब महंगा होगा आपको तो फायदा होगा, लेकिन बिजनेसेस को नुकसान है, जब उनको लैंड लेना है या रेंट करना है तो उनको महंगा पड़ रहा है, अगर वो बहुत ही महंगी जगह है तो वो क्यों ना सस्ती जगह में जाके करें, वो पाकिस्तान में क्यों क्यों करें, तो ये दोनों नुकसान आते हैं। तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से सोचनी होंगी ये, और मैं तो समझता हूँ कि अच्छा दो जो मैं बात कर रहा था कि पैरेलल ट्रैक्स जी एक तो आप इंडिविजुअली और गवर्नमेंट के सॉरी स्पेस के बाहर जितना ऑपरेट कर सकें मैक्सिमम करें जी। मैं समझता हूँ ये रियलिस्टिक है कि ये सेंसिबल है, क्योंकि मैंने भी देखे नहीं गवर्नमेंट में भी काम किया हुआ है, तो जितनी एनर्जी आप डालते हैं तो जो रिजल्ट है वो कम ही निकलता है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वो आपकी खिंच जाती है
जी।
साथ साथ गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव होना है, ठीक है ना, इसका कोई हल ही नहीं है, तो वो लोकल लेवल पे भी प्रोविंशियल फेडरल लेवल पे भी गवर्नमेंट को इम्प्रूव होना है, तो इन दोनों ट्रैक्स पे काम करें कि फिर उम्मीद इसकी है कि दो साल तीन साल बाद जब गवर्नमेंट इम्प्रूव हो जाती है और वो ये चीज़ें बेहतर करने लगते हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब थोड़ी मैं आपको एक इम्प्रूवमेंट के एक एग्जाम्पल दे दूँ, मैं कराची में था तो मेरी जी मैंने गाड़ी एक जगह पार्क की तो वो लिफ्ट हो गई वहाँ से ना जी, तो पार्किंग अभी से वहाँ मैंने नहीं देखा था, नो पार्किंग का साइन, तो फिर जब मैं वहाँ गया पीडी पुलिस स्टेशन में वहाँ मैं उसको लेने गया तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये 500 रुपये जी इसका वो है लिफ्टिंग चार्जेस हैं और मेरे ख्याल में 820 रुपये जो है वो इसका फाइन है,
अच्छा
चलान है, तो 1320 ये बनते हैं तो ये आप दे दें, और जो मैंने दिए ना उन्होंने कुछ उससे, अच्छा बाहर जो लोग खड़े थे वो कुछ और कहते हैं जी हम आपको हेल्प करते हैं, लेकिन वो मैंने कहा नहीं जी मैं खुद देख लूंगा जाके, मैं काउंटर पे जरूर जाऊंगा, तो उन्होंने वो लिए पैसे और वो उन्होंने पॉस्ट टाइप की एक पॉइंट ऑफ सेल किस्म की, जैसे वो क्रेडिट कार्ड उस किस्म की मशीन थी, तो उन्होंने उसमें वो सारा कुछ इनपुट किया, उसमें से तीन चीज़ें मिली, एक तो चलान की कॉपी, दो कॉपीज मिली, एक मेरी थी एक वो उनकी थी, उन्होंने कहा जी एक कॉपी आप दे दें एक आप अपने पास रखें, सारा कुछ ऑफिशियल सारा कुछ सिस्टम्स में, और कुछ उन्होंने नहीं लिया ऑन टॉप ऑफ दैट, और ये कराची में सिंध में जो मतलब کافی بدنام, ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت حالات ہیں خراب, لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. تو اب یہ ایک بڑی امپروومنٹ ہے, ایڈوانسمنٹ ہے جی. ٹھیک ہے,
اس طرح کی نا امپروومنٹ لاہور میں بھی ہو چکی ہے.
زبردست, وہ تو پہلے ہوئی تھی کراچی میں. ابھی
مجھے ہنسی آتی ہے اس امپروومنٹ پہ ویسے نا, کہ وہ موٹر سائیکل کا چالان کرتے ہیں نا ٹریفک پولیس والے, وارڈن جو ہے لاہور میں, تو اچھا وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ 200 روپے آپ کا جرمانہ ہے, تو آپ یہ کیش کا نمبر یا یہ نمبر اس پہ بھیج دیں آپ ابھی. چلے جائیں, بات ختم ہوگی, آپ کہیں اور جا کے. اچھا نہیں, اس میں کرپشن پاسبل نہیں ہے, مطلب یہ نہیں کہ کسی پرسنل نمبر پہ جا رہے ہو باقاعدہ, کیونکہ آپ کو میسج آ رہا ہے.
اگر پرسنل پہ نہیں جا رہا,
میسج کہاں گیا ہے, تو یقیناً یہ ٹیکنالوجی سے چیزوں کو تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے امپروو. اچھا میں ایک چیز جو ہم بات کر رہے تھے نا, اور میرے مجھے خیال آیا کہ یہ بڑا چارٹر آف اکانومی میں شامل اس کو ہونا چاہیے, کہ ہم نے جو بات کی تھی کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ لوکل انویسٹر بھی اور فورن انویسٹر بھی کیوں نہیں آتا. ایک تو لانگ ٹرم پالیسی فریم ورک کوئی نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو لانگ ٹرم پالیسی فریم ورک کو بھی چارٹر آف اکانومی کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیں پریکٹیکلی ہم سارے پالیٹیشین کو ٹاک شوز میں بیٹھا دیکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی لانگ ٹرم ہونا چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ ایک چیز بن سکتی ہے. تو چارٹر آف اکانومی میں چلے آپ کے جو پولیٹیکل فلاسفی کوئی بھی ہے آپ کی, اس پہ آپ اختلاف کرتے ہیں, مطلب پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ایک طرح سے فریڈم ہے کہ وہ اختلاف کریں, لیکن اس پہ اسٹرکچرل چیزیں جو ہیں ان پہ تو اگری کریں نا آپ, کہ بھائی آپ چلیں جی اگینسٹ دا پرائیویٹائزیشن ایک فریم ورک بنائیں, لیکن لانگ ٹرم ہو.
جی
یا پرائیویٹائزیشن کے حق میں بناتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم ہو پھر. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے. اچھا تھوڑا ہم چلتے ہیں واپس ایک چیز کی طرف آتے ہیں, اور یہ میں اسے اس طرح کہوں گا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سوشلزم از این آئیڈیا دیٹ نیور ڈائز. اچھا پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہنوں میں نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے پریکٹیکلی ایسے ہو جاتا ہے, مطلب ہمیں اتنا وہ نیچرل سمپل لگتا ہے, جبکہ لائف اتنی نیچرل اتنی سمپل نہیں ہے, خاص طور پر جب لوگ بہت زیادہ لوگ مل کے رہتے ہیں اس میں بڑے ایشوز جنم لیتے ہیں. تو دو چیزیں چلیں, زیادہ نہیں ہم تاکہ گفتگو زیادہ آگے نہ جائے, مجھے میرا خیال ہے ٹائم بھی شاید ہونے والا ہوگا, کہ ایک تو جو کہا جاتا ہے کہ بھائی اچھا اسی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے نا یا گورنمنٹ کی کوئی اینٹیٹی ایس او ای ہے یا کوئی بھی ہے, وہ بھی ایفیشینٹ ہو سکتی ہے. اچھا کیسے ایفیشینٹ ہو سکتی ہے, دنیا بھر کی مثالیں ہیں ہمارے پاس, اگر کہیں ہے بھی تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے پیریڈز آئیں گے جب ان پہ ایک طرح سے بہت زیادہ ایک سپرویژن ہو رہی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوگی, لیکن کہیں نہ کہیں چیزیں آہستہ آہستہ لیکس کر جاتی ہیں. اچھا پھر روٹین میں نہیں آ پاتی یہ ایفیشنسی. اور جو لارڈ ایکٹن کا جو اصل جو بات ہے اس کی, اور بڑی ہی یہ ایک طرح سے سمجھے کہ انسانی فطرت کو بیان کرتی ہے وہ, کہ اچھا بڑی اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ہے کہ all power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. اچھا اب اس سے نتیجہ, اس کے اندر ہی ایک نتیجہ بھی چھپا ہوا ہے, ایک لیسن بھی اس کے اندر موجود ہے, وہ لیسن یہی ہے کم سے کم پاور دیں گے تو کم سے کم کرپشن ہوگی, کم سے کم اس پاور کا ابیوز ہوگا. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ ایفیشینٹ ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کی اینٹیٹی ایس او ای ایفیشینٹ ہو سکتی ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اسے آپ پاور دیں وہ ایفیشینٹ ہو جائے گی, یہ کیسے پاسبل ہے؟
دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں ایکچولی, میں سپورٹ تو کرتا ہوں پرائیویٹائزیشن کو, لیکن ایک طرح سے دوسری سائڈ بھی میں سوچتا ہوں, کیونکہ ایک گلوبلی ایک پرائیویٹائزیشن, کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ یو کے کا ایگزامپل لے لیں, جب ٹرین ان کی ٹرین سروس جو تھی وہ پرائیویٹائز ہوئی, تو پھر یہ پروفٹ ظاہر ہے پھر جتنی بھی اچھی آپ کی ریگولیشن ہو, لیکن پروفٹ جو کنسیڈریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے جو آپ کے ایسے روٹس ہیں, ایسے جو آپ کے اسٹیشنز ہیں جہاں سے آپ پروفٹیبل نہیں ہو رہے, تو ان کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے, وہ بند بھی ہو جاتے ہیں, تو جو سٹیزنز ہیں پھر وہ یاد پرانے دن یاد کرتے ہیں کہ جی جس میں سروس جو تھی وہ زیادہ وائڈ اسپریڈ تھی اور فریکوینسی زیادہ تھی, جو صرف پروفٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ویٹ ہے. اب جیسے کیوبا کو دیکھ لیں فار ایگزامپل, کیوبا سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, وہاں گورنمنٹ سارا کچھ چلا رہی ہے, اب میڈیکل ایڈوکیشن, میڈیکل سیکٹر ان کا چل رہا ہے بہت اچھا, جو خیر میں وہاں گیا نہیں ہوں لیکن سننے میں آتا ہے. تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہماری جو سچویشن ہے نا وہ یہ کہ چیزیں اتنی خراب ہو گئیں اسٹیٹ, یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی, کہ انتہا پہ آ گئیں. तो अब ये कि हमारे पास मे बी आइडियल वर्ल्ड में, मतलब अगर हम 50s-60s का सोचें तो कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी जो गवर्नमेंट ठीक ठाक चला लेती, जैसे स्कूल्स ही ले लें, अक्सर आपको लोग मिलते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए और वो दिन याद करते हैं कि जी अच्छी पढ़ाई होती थी, अच्छे हमने वहाँ से स्टार्ट किया और हम आगे जाके हमने बिल्ड किया, अपना करियर बिल्ड किया और उस पर वो अच्छी फाउंडेशन थी हमारी, वो चीज़ें अच्छी भी थी, लेकिन फिर चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि वो एक्सट्रीम पे चले गई और फिर एक ये हमारा हम एक क्राइसिस में आ गए और अभी भी हम एक क्राइसिस में हैं, जहाँ तक स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं वो वर्स ईयर बाय ईयर वर्स होती जा रही है। तो एक तरह से ये एक क्राइसिस, जैसे सर्जरी नहीं होती जिसमें एक क्राइसिस इंटरवेंशन है, एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि इमीडिएट उसका उसकी फिक्सिंग आप, तो मेरे ख्याल में हमारे पास उस इसलिए चॉइस नहीं है क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। लेकिन इसमें भी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन में आ जाएं, मैं वहाँ ये डेफिनेटली इस तरह से डिसएग्री तो नहीं, लेकिन मेरा ये व्यू है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा रोल है और आप ये इस तरह से नहीं देख सकते कि जी सारा का सारा फोकस आप कहें जी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अगर वो लो इनकम उनको भी सिटीजन्स को एड्रेस कर रहे हैं और अगर उनकी फ़ी कम भी हो लेकिन वो उन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे अब जैसे प्राइवेट स्कूल्स तो पंजाब में आपको मिलेंगे, केपी में मिलेंगे, रूरल सिंध में तो प्राइवेट स्कूल्स हैं ही नहीं।
अच्छा।
और बलूचिस्तान में अब शायद थोड़े हों लेकिन पहले तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर क्या अगर आप पब्लिक एजुकेशन को बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जी इट्स नॉट वर्थ फोकसिंग, तो क्या जो रूरल सिंध में जो बच्चे हैं और जो रूरल बलूचिस्तान में, क्या वो आप उनका नहीं सोच रहे? तो जाहिर है उनका ऐसे तो नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली स्टेट की भी मतलब हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ चीज़ें स्टेट को रन करनी चाहिए और रन हो भी सकती हैं अगर वो फोकस उन पे किया जाए। और एक लेकिन मोस्टली जैसे एयरलाइंस हैं, जैसे रेलवेज, एनर्जी, ये बड़े कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स हैं, ये स्टेट को संभालना ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। स्टेट तो मतलब गवर्नेंस ले लें, लॉ देख लें, यही चीज़ें, जस्टिस देख लें, ये चीज़ें नहीं संभालती तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट और भी चीज़ें संभाले?
अरे जहाँ तक तो एजुकेशन का है ना, तो उसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, जैसे आपने बात की ना, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। लेकिन इसमें ये जिस एजुकेशन के जिस सेक्टर को गवर्नमेंट ने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है, और वही सेक्टर है असल में, वो प्राइमरी
जी बिल्कुल
एजुकेशन,
सबसे जरूरी वही
एजुकेशन बिल्कुल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए और बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि देखें ना वहाँ है, वहाँ से आप बेस बनती है बच्चे की और वो इंतहाई क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ पे, और हमने उसको बिल्कुल निग्लेक्ट करके वो जाके हायर एजुकेशन पे, समझे यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने जाके कहा जी चलो जी ये बना दो, पैसे दे दो, एच एस सी बन गया, ये हो गया, वो हो गया। जबकि मैं समझता हूँ कि असल जो तवज्जो है और असल जो फंड्स गवर्नमेंट को देने हैं, जहाँ पैसा लगाना है, ये इन्वेस्टमेंट होगी। एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट कहा भी जाता है तो वो प्राइमरी लेवल है।
बिल्कुल,
देखिए ना, अच्छी जब बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की बिल्डिंग है, जो उन्हें चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं, वो एक उनके अंदर उनकी शख्सियत को वो डैमेज भी कर सकती है चीज़, और उनकी शख्सियत को बना भी सकती है, उनमें एक ऑनर भी पैदा कर सकती है और अपने मुल्क के साथ एक समझे ताल्लुक भी पैदा कर सकती है उसमें। अच्छा, एक तो ये बात जो आपने की कि इसका मतलब है कि एफिशिएंसी गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में एफिशिएंट हो सकती है। अच्छा, लेकिन मैं आपने जो बात की थी ना, मैं थोड़ा सा इससे फिर वही बात है कि ये जो है प्रॉफिट कंसिडरेशन जो है, असल में तो अगर गवर्नमेंट अपना सुपरवाइजरी रोल सही तौर पर अदा कर रही हो तो प्रॉफिट कंसिडरेशन जो है वो कस्टमर सर्विस के साथ जुड़ जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, अगर कस्टमर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्रॉफिट सीधी सी बात है नीचे जाता जाएगा। लेकिन उसमें ये कि गवर्नमेंट का रोल चाहिए
जी
कि कोई सुपरवाइज कर रहा हो, क्योंकि एक चीज़ बड़ी हमारे जिस चीज़ को हमारे यहाँ उस पर ज़्यादा उसको छोड़ दिया जाता है, वो कि कोई भी बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज्ड है, छोटी सी भी अगर कोई एक एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि कस्टमर जो हैं उसकी जो सर्विसेज ले रहे हैं वो लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। अच्छा ओवरऑल भी यही है पाकिस्तान में, बड़े इदारे भी जितने, चाहे वो सरकारी इदारे हैं चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं, होना तो ये चाहिए कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं लेकिन नहीं कर रही होती हैं। और यही वाला समझे हिर फिर के बाद फिर उस पर आ जाती है अब प्राइवेटाइजेशन वाला जो मसला है, लोगों को अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन द ट्रू सेंस रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये इशू आज हम बैठे यहाँ डिस्कस ना कर रहे होते।
जी जी जी। अच्छा एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, दो एग्जाम्पल जी, कि जी देखें प्राइवेट सेक्टर में भी थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई है। पहले ये होता था कि जी प्राइवेट जब पढ़ जैसे स्कूल में या यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे कि जी जो कंपनी है उसका जी वन एंड ओनली जो पर्पस है वो है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू, ठीक है ना जी। अब ये थिंकिंग है कि जी दैट मे स्टिल बी द मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव यही हो, लेकिन फिर स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना और दूसरी सोशल वैल्यूज को भी का भी ख्याल रखना, कम्युनिटी, ये भी कंपनी की के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल किया हो गया,
ठीक है ना जी। जो है,
हाँ जी, तो वो प्राइवेट सेक्टर भी चेंज हो रहा है, तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है तो गवर्नमेंट भी बेहतर ये कर सकती है। दूसरी चीज ये कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, एक पूरा सेक्टर ऐसा आ गया है जो कहता है कि जी हम बिल्कुल ऑपरेट करेंगे जस्ट लाइक द ट्रेडिशनल प्राइवेट सेक्टर, लेकिन हमारे टारगेट्स मुख्तलिफ होंगे, सोशल टारगेट्स भी हो सकते हैं कि जी अगर हम एजुकेशन में हैं तो जी कितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने रिड्यूस करने हैं, ट्रेनिंग कितनी बेहतर होनी है, ये सारे टारगेट्स, और हम अपने आप को मेजर करेंगे अगेंस्ट दीज टारगेट्स। तो अब देखें दुनिया बदल रही है, अब प्राइवेट सेक्टर भी चेंज हो रहा है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट फंड्स भी चेंज हो रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है, दो मैं समझता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट जो हैं वो मतलब चेंज नहीं हो रही, नॉट इनफ, और दूसरा यूनिवर्सिटीज के जी, और यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ही जैसे डायनासोर्स की तरह लोग जी कम जा रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो या तो सेल्फ अपने आप को खुद सिखा रहे हैं या ऑनलाइन कोर्सेज से सीख रहे हैं
जी,
तो हमें ये सब कुछ सही करना है। लेकिन ये एक यूथ के जी 70% लेस देन 30 इयर्स, ये हमारा एक ट्रम्प कार्ड है, लेकिन ये जाहिर है ये डबल एज सॉर्ड है, अगर हम सही तरह मोटिवेट इनको सपोर्ट नहीं किया तो फिर वही हमारे लिए एक चैलेंज भी हो सकता है,
सही,
लेकिन ये हमारा एक ट्रम्प कार्ड है।
अच्छा बाज़ औक़ात मैं सोचता रहा हूँ इस चीज़ पे भी, और एक वो जो तसव्वुर हमारे जहन में बनते हैं ना कि भाई एक चीज़ प्राइवेटाइज होगी, जैसे बैंक प्राइवेटाइज हुई पाकिस्तान में, पूरा बैंकिंग सेक्टर समझे एक तरह से हो गया। अच्छा लेकिन वो बैंकिंग बैंक्स की सर्विसेज उतनी बेहतर नहीं हुई, कदरे बेहतर
जी, जी,
लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई, और फिर वो जो बात आपने की थी ना 60s में कि एफिशिएंसी थी
जी,
तो लेकिन उस वक्त वो प्राइवेट बैंक थे और वो बहुत ज़्यादा बेहतर थे, फिर वो नेशनलाइज हो गए, फिर जब वो दोबारा डी नेशनलाइज हुए, फिर समझे कि और जो बैंक गवर्नमेंट के थे वो प्राइवेटाइज हुए, तो वो चीज़ आई नहीं जो आनी चाहिए थी, जितनी सर्विसेज बेहतर होनी चाहिए थी। अच्छा मैं सोचता रहा एक चीज़
के, मैं बैंक का एक देखें ये क्लासिक एग्जांपल है बैंक्स, ये प्राइवेटाइज तो हो गए, मॉडर्नाइज हो गए, लेकिन जो उनका पर्पस है कि जी डिसइंटरमीडिएशन के पैसे जहाँ से जहाँ आपको मिल रहे हैं वहाँ से लें और जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाएं, वो बैंक्स नहीं कर रहे, लेकिन इसकी फॉल्ट मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट द बैंक्स, इट्स द रेगुलेटर, स्टेट बैंक ने, ठीक है ना जी, ये एक ये स्लीपिंग ऑन द वॉच वाली चीज है कि स्टेट बैंक हमारा सो गया बहुत डेकेड्स के लिए कि जी ये जो बिजनेस को जो पैसे चाहिए वो बैंक्स से मिल नहीं रहे, इंडिविजुअल्स को जो चाहिए स्मॉल बिजनेस को तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना जी, और गवर्नमेंट को सारे पैसे मिल रहे हैं और वो बड़े आराम से जो बैंक्स हैं जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, वो यही वजह है कि वो अपना काम ही नहीं कर रहे, लेकिन ये फॉल्ट बैंक्स की नहीं है, जाहिर है अगर बैंक्स को एक इजी वे ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स है तो वो क्यों ना करें,
बिल्कुल सही है,
ठीक है ना जी, तो ये हमारा रेगुलेटर की फॉल्ट है।
नहीं ये बिल्कुल सही बात है, स्टेट बैंक जो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है,
आपने ज्यादा खूबसूरती से कहा,
जो काम नहीं करना चाहिए था उसकी तरफ लगाया,
अभी भी टाइम है कि उठ जाए,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, वो इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, और ना अच्छा जो, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था ना कि बैंक्स जो हैं लोगों के लिए मतलब वहाँ पे सर्विसेज नहीं मिली, फिर भी देखे ना बैंक अकाउंट खुलवाना अभी भी कितना मुश्किल है, ये होना चाहिए भला, जिस आदमी के पास शनाख्ती कार्ड है वो गया है और अकाउंट खुल जाना चाहिए खुद ब खुद।
अब ये है कि वो डिजिटल वॉलेट्स ये जो मोबाइल फोन ये अब थोड़ा ये चीजें बेहतर कर रही हैं चीजें, लेकिन फिर भी
बैंक्स वाले मुझे अभी टोटल पिछले साल या दो साल के जब वो शमशाद अख्तर गवर्नर थे स्टेट बैंक की, तो अच्छा गवर्नर है स्टेट बैंक की, मैं वो ख्वाब खरगोश को आप जोड़िएगा जरा इसके साथ में, तो वो गवर्नर स्टेट बैंक की कह रही है मुझे एक साल हो गया मेरा अकाउंट नहीं खुल सका।
अच्छा अच्छा अच्छा,
ये आप बाकी आप
बड़ी सक्सेसफुल बहुत सी चीजें उन्होंने की भी, मैं उनको डिफेंड थोड़ा इस तरह से करूंगा कि बहुत सारी उन्होंने चीजें की, लेकिन सही भी है कि अभी भी बहुत सारा है जो करना है। आजकल जो है ना हालात उससे बहुत बेहतर हालात थे उस टाइम पे जब वो थी
जब थी वो लेकिन उन्होंने लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी नहीं है बेहतर। मैं बैंक
आजकल तो बिल्कुल नहीं,
आजकल तो बहुत बुरा हाल है
ना हमारे वो सेक्टर जो है,
इससे उनको खुद सोच लेना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी सोई हुई है, हुकूमत सोई हुई है, मैं मतलब
सिटीजंस भी सोए हुए हैं,
एक वो कहता हूं जी ख्वाब महल बना हुआ है जिसमें सब सोए हुए हैं, सिटीजंस नहीं सोए हुए, वो तो बेचारे रातों को नींद नहीं पूरी होती। अगर ये ख्वाब इस्तराहत या ख्वाब महल में है ना सारे,
ठीक है,
दूसरों को कुछ नहीं मिल रहा।
एक तो है ना जी जो सर्वाइवल जिनकी जो जो हमारा लो इनकम वो तो उन पे तो बहुत बड़ा बोझ है उनके लिए तो बहुत, लेकिन एक जो कैटेगरी है ना जी जो आप मिडिल इनकम ग्रुप से कह लें या अपर मिडिल, तो वो ना जी वो इंडिविजुअल अपना बेनिफिट और सेफ्टी देख रहे हैं और कम्युनिटी और मुल्क का कम देख रहे हैं, और ये पता नहीं एक उनका भी फॉल्ट नहीं है कि उन्होंने देखा है एक एक किस्म की तरबियत और उनको वैसी मिली है, लेकिन ये इस चीज को रिवर्स होने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि अगर इंडिविजुअल पे अगर वो देखते रहे तो फिर जाहिर है कि मुल्क किस तरह से
बैंक्स ना एक बड़ी प्राइवेटाइज हो भी गए, लेकिन मैं देखता हूँ जाना होता है मेरा
जी जी जी,
और जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग नहीं है हमारे, आम पढ़े लिखे कारोबारी है, उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है वही मुझे सरकारी दफ्तर याद आ जाते हैं। मैंने एक दफ़ा कहा भी बैंक वालों को ना, वो पता नहीं क्या ये करें जी वो कागज़ लाएं यहाँ दस्तखत करें, मैंने कहा भाई ये बैंक है या बैंक को एजी ऑफिस बना दिया आपने,
आप नेशनल बैंक ब्रांच में आप चले जाएं तो उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता।
अच्छा जो बाद में कहना चाह रहा था जहाँ हम अब ख़त्म करते हैं अपनी गुफ्तगु को अपने मुकालमे को, वो थी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। जितना कैलस हमारा पब्लिक सेक्टर था और अभी भी है, उतना ही कैलस प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का साइज बढ़ रहा है, जैसे आपने भी एक तरह से एविडेंस दी उसकी, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ ना कुछ समझे उनका जो वो थोड़ा सा कोई ज़मीर जाग रहा है कि वो अपने कस्टमर को भी हम एड्रेस कर लें, उनकी को सेटिस्फेक्शन का भी ख्याल कर लें। तो यही बात है कि प्राइवेटाइजेशन जितनी तेज़ी से होगी प्राइवेट सेक्टर का साइज उतनी तेजी से बढ़ेगा, कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के नतीजे में जो गुड्स और सर्विसेज हो सकती हैं वो लोगों तक आसानी के साथ पहुंच सकेंगे, और उससे पूरे हमारा जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट भी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी है, उसमें बेहतरी आएगी और हम मजमूई तौर पे लोग जो है खुशहाली की तरफ जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं
एक 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 लास्ट चीज मैं कह रही थी वो ये कि जी प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं ये मेरा एक थिंकिंग पहले भी थी कोई 10 साल पहले भी आजकल भी मैं समझता हूँ कि जी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर और न्यू प्राइवेट सेक्टर, जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर वो लार्ज साइज कंपनीज जो कि रेंट सीकिंग वो उनको हैंडआउट्स मिल रहे हैं रेंट सीकिंग वो कर रहे हैं, ठीक है ना जी, तो वो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर। न्यू प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी टेलीकॉम कंपनी जो हैं वो एक कम्पीट करना चाह रही है मेरिट पे। अब जरूरत ये है कि न्यू प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर को साइड पे वो हों, क्योंकि उनका टाइम अब वो नहीं रहा।
मोइन साहब आपने ना बड़ी जबरदस्त क्लासिफिकेशन की है, ये हमें बिल्कुल इसे सपोर्ट करना, ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है इसके पीछे ना। तो चले इस पे हम मोइन साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छा हमारा में रहा मेरा और हमारा जो हमारे सामईन हैं जो ऑडियंस हैं वो भी जो गुफ्तगु हमारी है यकीनन उससे प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है पाकिस्तान में या अमल जो बहुत सुस्त रॉ है
जी जी।
तो उसमें तेज़ी क्यों नहीं आ रही उसके बारे में बहुत सी चीज़ें उनके सामने भी आई होंगी। तो इसके साथ ही हम आज का अपना ये जो हमारी प्राइम इंस्टीट्यूट की वीडियो सीरीज़ है मुकालमा सब के साथ उसको ख़त्म करते हैं। शुक्रिया जी।